पहला सलातीन 22वां बाब। और 3 बरस वो ऐसे ही रहे, और इसराइल और आराम के दरमियान लड़ाई ना हुई। और 3रे साल यहूदा का बादशाह यहोसफत शाहे इसराइल के हां आया, और शाहे इसराइल ने अपने मुलाजिमों से कहा, तुमको मालूम है कि रामात जल्लाद हमारा है, पर हम खामोश हैं, और शाहे आराम के हाथ से उसे छीन नहीं लेते। फिर उसने यहोसफत से कहा, क्या तू मेरे साथ रामात जलाद से लड़ने चलेगा? यहोसफत ने शाहे इसराइल को जवाब दिया, मैं ऐसा हूं जैसा तू, मेरे लोग ऐसे हैं जैसे तेरे लोग, और मेरे घोड़े ऐसे हैं जैसे तेरे घोड़े। और यहोसफत ने शाही इसराइल से कहा, जरा आज खुदावंद की मर्जी भी तो दरियाफ्त कर ले। तब शाही इसराइल ने नबियों को, जो करीब 400 आदमी थे, इकट्ठा किया और उनसे पूछा, मैं रामात जल्लाद से लड़ने जाऊं या बाज रहूं? उन्होंने कहा, जा, क्योंकि खुदावंद उसे बादशाह के कब्जा में कर देगा। लेकिन यहोसफत ने कहा, क्या इनको छोड़कर यहां खुदावंद का कोई नबी नहीं है ताकि हम उससे पूछें? शाहे इसराइल ने यहोसफत से कहा कि एक शख्स एमला का बेटा मकाया है तो सही, जिसके जरिया से हम खुदावंद से पूछ सकते हैं, लेकिन मुझे उससे नफरत है, क्योंकि वो मेरे हक में नेकी की नहीं बल्कि बदी की पेशनगोई करता है। यहोसफत ने कहा, बादशाह ऐसा ना कहे। तब शाहे इसराइल ने एक सरदार को बुलाकर कहा कि एमला के बेटे मकाया को जल्द ले आ। उस वक्त शाहे इसराइल और शाहे यहूदा यहोसफत सामरिया के फाटक के सामने एक खुली जगह में अपने अपने तख्त पर शाहाना लिबास पहने हुए बैठे थे, और सब नबी उनके हजूर पेशनगोई कर रहे थे। और कनाना के बेटे सदकिया ने अपने लिए लोहे के सींग बनाए और कहा, खुदावंद यूं फरमाता है कि तू इनसे अरामियों को मारेगा जब तक वो नाबूद ना हो जाएं। और सब नबियों ने यही पेशनगोई की और कहा कि रामात जल्लाद पर चढ़ाई कर और कामयाब हो, क्योंकि खुदावंद उसे बादशाह के कब्जा में कर देगा। और उस कासद ने जो मकाया को बुलाने गया था उससे कहा, देख, सब नबी एक जुबान होकर बादशाह को खुशखबरी दे रहे हैं, सो जरा तेरी बात भी उनकी बात की तरह हो, और तू खुशखबरी ही देना। मिकाया ने कहा, खुदावंद की हयात की कसम, जो कुछ खुदावंद मुझे फरमाए मैं वही कहूंगा। सो जब वो बादशाह के पास आया तो बादशाह ने उससे कहा, मिकाया, हम रामात जल्लाद से लड़ने जाएं या रहने दें? उसने जवाब दिया, जा और कामयाब हो, क्योंकि खुदावंद उसे बादशाह के कब्जा में कर देगा। बादशाह ने उससे कहा, मैं कितनी मर्तबा तुझे कसम देकर कहूं कि तू खुदावंद के नाम से हक के सिवा और कुछ मुझको ना बताए। तब उसने कहा, मैंने सारे इसराइल को उन भेड़ों की मानिंद जिनका चौपान ना हो पहाड़ों पर परागंदा देखा, और खुदावंद ने फरमाया कि इनका कोई मालिक नहीं, सो वो अपने अपने घर सलामत लौट जाएं। तब शाहे इसराइल ने यहोसफत से कहा, क्या मैंने तुझको बताया नहीं था कि ये मेरे हक में नेकी की नहीं बल्कि बदी की पेशनगोई करेगा? तब उसने कहा, अच्छा तो खुदावंद के सुखन को सुन ले। मैंने देखा कि खुदावंद अपने तख्त पर बैठा है और सारा आसमानी लश्कर उसके दाहने और बाएं खड़ा है। और खुदावंद ने फरमाया, कौन अखियब को बहकाएगा ताकि वो चढ़ाई करे और रामात जल्लाद में खेत आए। तब किसी ने कुछ कहा और किसी ने कुछ, लेकिन एक रूह निकलकर खुदावंद के सामने खड़ी हुई और कहा, मैं उसे बहकाऊंगी। खुदावंद ने उससे पूछा, किस तरह? उसने कहा, मैं जाकर उसके सब नबियों के मुंह में झूठ बोलने वाली रूह बन जाऊंगी। उसने कहा, तू उसे बहका देगी और गालिब भी होगी, रवाना हो जा और ऐसा ही कर। सो देख, खुदावंद ने तेरे इन सब नबियों के मुंह में झूठ बोलने वाली रूह डाली है और खुदावंद ने तेरे हाथ में बदी का हुक्म दिया है। तब केनाना का बेटा सदकिया नजदीक आया और उसने मकाया के गाल पर थप्पड़ मार कर कहा, खुदावंद की रूह तुझसे बात करने को किस राह से होकर मुझ में से गई? मकाया ने कहा, ये तू उसी दिन देख लेगा जब तू अंदर की एक कोठरी में घुसेगा ताकि छुप जाए। और शाही इसराइल ने कहा, मकाया को लेकर उसके शहर नाजिम अमून और युआस शहजादा के पास लौटा ले जाओ और कहना, बादशाह यूं फरमाता है कि इस शख्स को कैदखाना में डाल दो और इसे मुसीबत की रोटी खिलाना और मुसीबत का पानी पिलाना जब तक मैं सलामत ना आऊं। तब मकाया ने कहा, अगर तू सलामत वापस आ जाए तो खुदावन ने मेरी मार्फत कलाम ही नहीं किया। फिर उसने कहा, ऐ लोगो, तुम सब के सब सुन लो। सो शाहे इसराइल और शाहे यहूदा यहूसफ्त ने रामात जल्लाद पर चढ़ाई की और शाहे इसराइल ने यहूसफ्त से कहा, मैं अपना भेष बदलकर लड़ाई में जाऊंगा, पर तू अपना लिबास पहने रह। सो शाहे इसराइल अपना भेष बदलकर लड़ाई में गया। उधर शाहे आराम ने अपने रथों के 3200 सरदारों को हुक्म दिया कि किसी छोटे या बड़े से ना लड़ना सिवाय शाहे इसराइल के। सो जब रथों के सरदारों ने यहूसफ्त को देखा तो कहा कि जरूर शाहे इसराइल यही है, और वो उससे लड़ने को मुड़े। तब यहूसफ्त चिल्ला उठा जब रथों के सरदारों ने देखा कि वो शाहे इसराइल नहीं, तो वो उसका पीछा करने से लौट गए। और किसी शख्स ने यूं ही अपनी कमान खींची और शाहे इसराइल को जोशन के बंदों के दरमियान मारा। तब उसने अपने सारथी से कहा कि बाग फेर कर मुझे लश्कर से बाहर निकाल ले चल, क्योंकि मैं जख्मी हो गया हूं। और उस दिन बड़े घुमसान का रन पड़ा और उन्होंने बादशाह को उसके रथ ही में रामियों के मुकाबले संभाले रखा और खून उसके जख्म से बहकर रथ के पायदान में भर गया। और आफताब गरूब होते हुए लश्कर में ये पुकार हो गई कि हर एक आदमी अपने शहर और हर एक आदमी अपने मुल्क को जाए। सो बादशाह मर गया और वो सामरिया में पहुंचाया गया और उन्होंने बादशाह को सामरिया में दफन किया और उस रथ को सामरिया के तालाब में धोया। कस्बियां यहीं गुस्ल करती थीं और खुदावंद के कलाम के मुताबिक जो उसने फरमाया था कुत्तों ने उसका खून चाटा। और अखियब की बाकी बातें और सब कुछ जो उसने किया था और हाथी दांत का घर जो उसने बनाया था और उस सब शहरों का हाल जो उसने तामीर किए, सो क्या वो इसराइल के बादशाहों की तवारीख की किताब में कलम बंद नहीं? और अखियब अपने बाप दादा के साथ सो गया और उसका बेटा अखजिया उसकी जगह बादशाह हुआ। और आसा का बेटा यहूसफ्त शाहे इसराइल अखियब के चौथे साल से यहूदा पर सल्तनत करने लगा। और जब यहूसफ्त सल्तनत करने लगा तो 35 बरस का था और उसने यरूशलेम में 25 बरस सल्तनत की। उसकी मां का नाम अजूबा था, जो सलही की बेटी थी। वो अपने बाप आसा के नक्शे कदम पर चला, उससे वो मुड़ा नहीं, और जो खुदावंद की निगाह में ठीक था उसे करता रहा, तो भी ऊंचे मुकाम ढाए ना गए। लोग उन ऊंचे मुकामों पर हनूज कुर्बानी करते और बखूर जलाते थे। और यहूसफ्त ने शाहे इसराइल से सुलह की। और यहूसफ्त की बाकी बातें और उसकी कुवत जो उसने दिखाई और उसके जंग करने की कैफियत, सो क्या वो यहूदा के बादशाहों की तवारीख की किताब में कलमबंद नहीं? और उसने बाकी लोथियों को जो उसके बाप आसा के अहद में रह गए थे मुल्क से खारिज कर दिया। और अदोम में कोई बादशाह ना था, बल्कि एक नायब हकूमत करता था। और यहूसफ्त ने तरसेस के जहाज बनाए ताकि ओफेर को सोने के लिए जाएं, पर वो गए नहीं, क्योंकि वो एसून जाबर ही में टूट गए। तब अखियब के बेटे अखजिया ने यहूसफ्त से कहा, अपने खादिमों के साथ मेरे खादिमों को भी जहाजों में जाने दे, पर यहूसफ्त राजी ना हुआ। और यहूसफ्त अपने बाप दादा के साथ सो गया और अपने बाप दाऊद के शहर में अपने बाप दादा के साथ दफन हुआ। और उसका बेटा यहूराम उसकी जगह बादशाह हुआ। और अखियब का बेटा अखजिया शाहे यहूदा यहूसफ्त के 17वें साल से सामरिया में इसराइल पर सल्तनत करने लगा। और उसने इसराइल पर 2 बरस सल्तनत की। और उसने खुदावंद की नजर में बदी की और अपने बाप की राह और अपनी मां की राह और नबात के बेटे यरूबाम की राह पर चला, जिससे उसने बनी इसराइल से गुनाह कराया। और अपने बाप के सब कामों के मुआफिक बाल की प्रस्तुति करता और उसको सिजदा करता रहा। और खुदावंद इसराइल के खुदा को गुस्सा दिलाया।